नमस्कार भारत, 7 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमेरिका सीरिया से पूरी तरह बाहर नहीं निकालेगा अपनी सेना।
We are pulling back in Syria. We're going to be removing our troops. I never said we're doing it that quickly, but we're definitely...
दो बड़े नेताओं के आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाने से क्या होगा असर?
देखिए, संकट की स्थिति तो उसी समय शुरू हो गई थी जब पार्टी के 4 सांसदों में से लोग धीरे धीरे हटने शुरू हो गए थे। जो लोग जाते गए उनके बाद भी पार्टी को समझ नहीं आई।
जानेंगे लेखिका नयनतारा सहगल का मराठी साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम क्यों रद्द किया गया। होगा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी और उसत का ब्लॉग भी, लेकिन पहले थोड़ा इंतजार, सुनिए विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संकेत दिए हैं कि सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी में अभी वक्त लगेगा। इसके लिए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कुछ शर्तें रखी हैं। इसराइल दौरे पर गए बोल्टन ने कहा कि पहले चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट की हार को सुनिश्चित करना होगा और तुर्की को अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों को सुरक्षा देने पर सहमति देनी होगी। बोल्टन आज तुर्की के नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ दूसरी बैठक पर बातचीत हो रही है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर कोरिया के साथ हुई पहली बैठक अच्छी रही थी। पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ जनवरी या फरवरी में दूसरी मुलाकात हो सकती है। वहीं नए साल पर दिए अपने संबोधन में किम ने भी परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता दोहराई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीका उत्तर कोरिया पर लगे अपने प्रतिबंध हटाए, नहीं तो वो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर कोरिया के नेता से दूसरे सम्मेलन के बारे में बात की है, लेकिन प्रतिबंधों को फिलहाल हटाने से उन्होंने इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
We're negotiating a location. It will be announced probably not in the not too distant future.
हम बैठक की जगह को लेकर बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने भी मीडिया में कहा है कि वो मिलना चाहते हैं, वो भी मिलना चाहते हैं और हम भी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे। जब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता तब तक हम उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए रखेंगे। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के चुनाव आयोग ने आम लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। देश में पिछले रविवार को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसके नतीजे इस रविवार को जारी किए जाने थे, लेकिन नतीजे अब तक नहीं आने की वजह से लोग चिंतित हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख कॉर्ने नांगा ने कहा कि अब तक उन्हें सिर्फ आधे चुनाव केंद्रों की मतगणना मिली है, जिसकी वजह से वो रविवार को राष्ट्रपति पद जीतने वाले का नाम घोषित नहीं कर पाए। तीन जनवरी तक हमारे पास सिर्फ 20% नतीजे आए थे और अभी तक सिर्फ 53% ही आए हैं। हम पूरे नतीजे आने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक हमारी अपील है कि जनता धैर्य बनाए रखे। ये थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के चुनाव आयोग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ह्यूमन राइट वॉच ने थाईलैंड से अपील की है कि वो इस्लाम त्याग कर घर से भागी सऊदी महिला को ऑस्ट्रेलिया जाने दें। राहफ मोहम्मद अल कुनन फिलहाल बैंकॉक में फंसी हैं। उनका कहना है कि थाईलैंड की सरकार उन्हें वापस सऊदी भेजना चाहती है। 18 साल की अल कुनन का कहना है कि अगर उन्हें स्वदेश भेजा गया तो उनका परिवार उनकी हत्या कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन और कांग्रेस के सहयोगियों के बीच हुई ताज़ा बैठक सकारात्मक रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने कहा है कि व्हाइट हाउस मैक्सिको दीवार की फंडिंग की मांग के बिना कामबंदी खत्म करने का रास्ता निकाले और बजट पास करे। इस पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस का कहना था कि राष्ट्रपति इस बात पर सहमत नहीं होंगे। बजट अटकने की वजह से सरकार के 9 विभागों का कामकाज ठप है। ट्रंप ने कहा है कि विवाद सुलझाने के लिए सोमवार और बुधवार को अहम बैठकें होंगी। अगर ये कामबंदी इस हफ्ते के अंत तक भी खत्म नहीं हुई तो ये अमेरिकी सरकार के इतिहास की अब तक की सबसे लंबी कामबंदी होगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का, ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ये कहकर दुनिया को चौंका दिया था कि सीरिया में तैनात अमेरिका के 2000 जवान वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तब तक अमेरिकी सेना को वापस नहीं बुलाएंगे जब तक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट सीरिया से बाहर नहीं चला जाता। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी से।
19 दिसंबर को ट्विटर पर जारी एक वीडियो संदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जीत की घोषणा की थी और कहा था कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिका की सेना घर वापस लौट रही है। इसके बाद अमेरिका के अधिकारियों ने बताया था कि उनकी सेना 30 दिन के अंदर सीरिया छोड़ देगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की काफी निंदा हुई और उनके सहयोगियों ने भी इस पर हैरानी जताई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सेना तब तक पूरी तरह से सीरिया नहीं छोड़ेगी जब तक ISIS सीरिया से नहीं चला जाता। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
We are pulling back in Syria. We're going to be removing our troops. I never said we're doing it that quickly, but we're decimating ISIS.
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हम सीरिया से अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम एकदम से पूरी सेना को वहां से बुला लेंगे। हम ISIS का खात्मा कर रहे हैं। 2 साल पहले जब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना था तो ISIS पूरे सीरिया और इराक में फैला था। हमने इराक से ISIS को खत्म किया। सीरिया से हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं, लेकिन जब तक ISIS सीरिया से नहीं चला जाता तब तक पूरी तरह से अमरीकी सेना को वापस नहीं बुलाएंगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी कहा कि अमेरिका की सेना सीरिया से तभी वापस आएगी जब तुर्की अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों की रक्षा का वादा करेगा। बोल्टन फिलहाल इसराइल के दौरे पर हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ एक प्रेस वार्ता में बोल्टन ने कहा,
Right on your border we have the problem of the conflict in Syria.
जॉन बोल्टन कह रहे थे इसराइल से लगने वाले सीरिया के बॉर्डर पर हम ISIS से लड़ रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमरीकी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया है, लेकिन ये तभी होगा जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ISIS हार चुका है और दोबारा अपना सिर उठाने की स्थिति में नहीं है। हम अपने सहयोगी इसराइल और क्षेत्र के दूसरे दोस्तों की रक्षा का भी ध्यान रखेंगे। सीरिया में अमरीका के करीब 2000 सैन्यकर्मी तैनात हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2015 में कुर्द लड़ाकों को प्रशिक्षित करने के लिए अमेरिका की एक विशेष सेना की टुकड़ी को वहां भेजा था। उसके बाद से सीरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ती गई और वहां अब अमेरिकी सेना के कई सैन्य ठिकाने हैं।
फिलहाल सीरिया में रहेंगे अमरीकी जवान, रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। वहीं सऊदी अरब की एक युवती ने बताया है कि वह बैंकॉक के मुख्य एयरपोर्ट में फंस गई हैं। युवती के अनुसार वह अपने परिवार से दूर भागकर ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रही थी। राहफ मोहम्मद अल कुनन नामक इस युवती की उम्र 18 साल है। मोहम्मद अल कुनन बीबीसी को बताया कि वह अपने परिवार के साथ कुवैत की यात्रा पर थी। 2 दिन पहले उन्होंने कुवैत से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट पकड़ी थी। बैंकॉक से उन्हें ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट लेनी थी। मोहम्मद अल कुनन ने बताया कि सऊदी अधिकारी ने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। मोहम्मद अल का कहना है कि उन्होंने इस्लाम त्याग दिया है और अब उन्हें डर है कि उन्हें जबरदस्ती सऊदी अरब ले जाया जाएगा जहां उनके परिवार उनकी हत्या कर सकता है। उन्होंने कहा,
When I come, someone said to me that we will have the visa so I can go inside Thailand.
जब मैं यहाँ आई तो मुझसे कहा गया कि हमारे पास वीजा है, इसलिए मैं थाईलैंड आ सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने 1 घंटे के लिए मेरा पासपोर्ट ले लिया और फिर वे 5-6 लोगों के साथ आए। मुझे लगता है वे पुलिस वाले थे और वे मेरे पिता के कहने पर मुझे वापस सऊदी अरब ले जाना चाहते हैं। वे बेहद गुस्सा थे। बैंकॉक में मौजूद बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड ने बताया है कि मोहम्मद अल कुनन बहुत घबराई हुई है। मोहम्मद अल कुनन के अनुसार उनके पास एक ऑस्ट्रेलियाई वीजा है। बीबीसी के कार्यक्रम न्यूज आवर में मोहम्मद अल कुनन ने बताया कि वे इस समय ट्रांजिट इलाके के एक होटल में हैं। वे लगातार इस मामले पर ट्वीट कर रही हैं। तकरीबन 3 घंटे पहले किए गए ट्वीट में उन्होंने अपने वापस कुवैत जाने की फ्लाइट की जानकारी साझा की थी। रुख करते हैं दूसरी खबर का। अमेरिका के एरिजोना राज्य में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक दशक से कोमा में जी रही एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस बीमार महिला का यौन उत्पीड़न तो नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश मठेनी।
पीड़ित महिला फिनिक्स इलाके के नजदीक हेसिंडा हेल्थ केयर के एक क्लिनिक में भर्ती थी। हेसिंडा हेल्थ केयर ने इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दी है। उनकी तरफ से इस मामले पर सिर्फ अफसोस जताया गया है। वहीं अमरीकी चैनल CBS के अनुसार नवजात स्वस्थ है। सूत्रों के हवाले से इस चैनल ने बताया है कि क्लिनिक के स्टाफ को महिला के गर्भवती होने की भनक तक नहीं थी। महिला की पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई है। फिनिक्स पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि इस मामले की जांच फिलहाल जारी है। वहीं CBS फिनिक्स से जुड़े चैनल KPHO TV ने बताया है कि महिला ने 29 दिसंबर को बच्चे को जन्म दिया। अपनी रिपोर्ट में चैनल ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि क्लिनिक के स्टाफ को महिला के गर्भवती होने की जानकारी तब तक नहीं थी जब तक कि उस महिला ने बच्चे को जन्म नहीं दे दिया। समाचार चैनल के सूत्र ने बताया है कि महिला को हर वक्त देखभाल की जरूरत रहती थी, इस वजह से कमरे में बहुत से लोग आते जाते थे। सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद क्लिनिक ने अपने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। इन नियमों के अनुसार अब अगर कोई पुरुष किसी महिला मरीज से मिलने आएगा तो उनके साथ एक महिला स्टाफ भी जाएगी।
कोमा में मौजूद महिला ने दिया बच्चे को जन्म, जानकारी दे रही थी कमलेश मठेनी। आते हैं भारत। वरिष्ठ वकील HS फुलका के बाद सुखपाल सिंह खेरा ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब में आपके दो बड़े नेताओं ने एक के बाद एक पार्टी छोड़ दी है। BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र ने चंडीगढ़ में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा से संपर्क किया और उनसे पूछा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है।
देखिए, पंजाब में जो इकाई है आम आदमी पार्टी की, उसका तो बुरा हाल है। पिछले कुछ समय से जिस तरह यहाँ भी इस्तीफे का दौर चल रहा है, 84 के अभी दंगों के बारे में जो फैसला आने के बाद HS फुलका ने रिजाइन कर दिया, सुखपाल खैरा ने कर दिया। हालांकि इन्होंने अपने अपने जो कारण हैं अलग अलग बताए हैं। सुखपाल खैरा केंद्रीय नेतृत्व की जो सीमा जोड़ी है उसको कारण बताते रहे हैं, स्थानीय इकाई की जो स्वायत्तता है उसकी मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। तो इन्हीं बातों के लेकर उन्होंने अपना एक रिजाइन जो है वो दिया है। हालांकि अभी रिजाइन जो है वो सदस्यता का उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, स्वीकार नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हालत बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये सारे जो संकेत हैं ये स्थानीय इकाई के लिए कोई अच्छे संकेत तो है नहीं है।
सुखपाल खैरा के बारे में थोड़ा बताएं, क्या स्टेक था उनका पार्टी में, किस तरह से वो पिछले चुनाव में सक्रिय रहे हैं, कैसे वो एकदम से ऐसा लग रहा था कि पंजाब में किसी समय पार्टी का फेस भी हो सकते हैं।
देखिए, वो रहा है, ऐसा है कि सुखपाल खैरा पंजाब की राजनीति में बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस के समय रहे हैं, वो अकाली दल के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। देखिए, राजनीति का एक अलग ये एक फेस हो सकता है। यही सुखपाल खैरा थे जो 1984 के बाद भी इन चीजों से बने रहे। अब आज उसके दौर में, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को संभाला, एक तरह से KAP पार्टी को आगे भी लेके गए उस दौर में, जबकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में एक वजूदी स्टेक पे लगा था। तो सुखपाल खैरा ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात इसमें सिर्फ इतनी सी आती है कि ऐसे मौके पर जब पार्टी की केंद्रीय कमान है वो भी हिली हुई है और यहाँ पंजाब की इकाई भी हिली हुई है, ऐसे मौके पर सुखपाल खैरा का छोड़ के जाना बहुत सारी चीजों को संकेत करता है। इन मामलों में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सुखपाल खैरा वही है जिन्होंने पार्टी से अलग होने के बाद साथ विधायकों को लेकर अलग से अपना एक वजूद बनाने की कोशिश करी। अब उन्होंने लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। अब हालात ऐसे बदले हुए हैं कि सुखपाल खैरा ने खुद तो प्राथमिक सदस्य इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बाकी इतना बड़ा रिस्क विधायक होने का, विधायक के पद का इस्तीफा देने का जो खतरा है, वो बाकी उनके गुट के बाकी लोग कितना उठा पाएंगे, ये भी एक बड़ी बात रहेगी सोचने वाली। बहुत ज्यादा लगाव ना होना भी कारण रहा है।
2019 में चुनाव है और 2014 के चुनाव हमें याद है, जब आम आदमी पार्टी को अगर कहीं से सफलता मिली थी तो वो पंजाब प्रदेश था। 2019 के चुनाव इतने करीब हैं और पार्टी में ये सब हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर के बहुत संकट की स्थिति मालूम हो रही है।
देखिए, संकट की स्थिति तो उसी समय शुरू हो गई थी जब पार्टी के 4 सांसदों में से लोग धीरे धीरे हटने शुरू हो गए थे। जो लोग जाते गए उनके बाद भी पार्टी को समझ नहीं आई, और पार्टी के जो बचे हुए सदस्य रहे यहाँ पर, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी किसी मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश नहीं करी। उस प्रकार की कोई भी विचारधारा, कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठाया जिसको लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी आंदोलनकारी छवि और आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी की छवि बनाए रख पाती।
आम आदमी पार्टी में इस्तीफों से क्या होगा असर, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा। फिर एक बार कोई साहित्य सम्मेलन चर्चा में आ गया है। मराठी भाषा के सबसे बड़े साहित्यिक कार्यक्रम अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन से साहित्यकार नयन तारा सहगल का नाम हटा दिया गया है। 11 जनवरी से महाराष्ट्र के यवतमाल में ये 92वां साहित्य सम्मेलन शुरू होना था। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन साहित्यकार नयनतारा सहगल को करना था और उन्हें उद्घाटन भाषण भी देना था, लेकिन आयोजकों ने ऐन मौके पर उन्हें इस सम्मेलन में आने से मना कर दिया। उनके इस सम्मेलन में शामिल होने पर पहली बार महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इसका उद्घाटन किसी मराठी साहित्यकार द्वारा ही किया जाना चाहिए, जबकि नयनतारा अंग्रेजी की लेखिका हैं। किसानों के लिए काम करने वाले शेतकारी न्याय आंदोलन समिति ने भी नव निर्माण सेना का समर्थन किया था। नयनतारा ने बीबीसी मराठी सेवा से बातचीत में कहा, मैं इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आ सकती, इसको लेकर आयोजकों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से इस कार्यक्रम में न आए। असहमतियों को दबाने की कोशिश सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। महाराष्ट्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में जो यह हुआ है उससे मुझे बुरा लग रहा है। मैंने मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत से साहित्य से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, लेकिन आयोजकों के इस रवैये से मैं दुखी हूँ। शेतकारी न्याय आंदोलन समिति के देवानंद पवार कहते हैं कि उनका मानना था कि अंग्रेजी लेखक के हाथ से उद्घाटन नहीं होना चाहिए, लेकिन सहगल की अवमानना का उनका उद्देश्य नहीं था। साहित्य सम्मेलन में सहगल जो भाषण देने वाली थीं उसकी प्रति बीबीसी को प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, मॉब लिंचिंग, इतिहास के पुनर्लेखन, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता आदि जैसे मुद्दे पर जमकर हिंदुत्व विचारधारा की आलोचना की है। अपने लिखित भाषण में नयनतारा ने अपने माता पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ देश के लिए लड़ाई लड़ी क्योंकि उनमें आज़ादी को लेकर जुनून था, लेकिन क्या वह जुनून आज भी मौजूद है? उन्होंने लिखा है, क्या हम उन पुरुष महिलाओं का सम्मान करते हैं जो हमसे पहले चले गए हैं, जिनमें से कईयों ने लड़ते हुए जाने दी हैं ताकि भविष्य के भारतीय स्वतंत्र जी सकें। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। उन्होंने अपने भाषण में लिखा है कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और उनकी क्या विचारधारा है, आज सब पर सवाल किए जा रहे हैं और धर्म के नाम पर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं।
लेखिका नयनतारा सहगल का नाम साहित्य सम्मेलन से हटाया गया। अधिक जानकारी दे रहे थे इकबाल अहमद। अब जान लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ खास है। गुरप्रीत सैनी बताएं।
जी, रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग हुई। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि रक्षा मंत्री संसद में HAL को 1,00,000 करोड़ रुपए देने का सरकार का आदेश दिखाएं या फिर इस्तीफा दें। इस पर निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया और उन्होंने पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक दिए गए हैं HAL को उसकी जानकारी दी और कहा कि ये शर्म की बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष मुद्दे को पूरी तरह से समझे बिना देश को गुमराह कर रहे हैं। ये खबर लगभग कई सारे अखबारों में, सभी अखबारों में दिख रही है
जी।
इसके अलावा बीजेपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी जो बदले की संस्कृति अपना रही है वो कभी ना कभी उस पर भी आ सकती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास अगर CBI है तो हमारे पास गठबंधन है, तो कभी ना कभी तो हम भी सत्ता में आ सकते हैं।
तो जनसत्ता पे भी अखिलेश के नाम से हेडिंग लगी है कि CBI को जवाब देने के लिए तैयार हैं अखिलेश, जो पूरा का पूरा खनन मामले का घोटाले की जांच की बात शुरू हो गई है, जांच शुरू हो गई है उसको लेकर इन्होंने कहा है। इसके अलावा एक जनसत्ता पे मैं हेडिंग देख रहा हूँ गुरप्रीत, इसमें लिखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ेगी सरकार। ये रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है। और वहीं जनसत्ता पे ही हेडिंग है, मोदी ने कहा है कि पुत्र मोह में आंध्र को पीछे धकेल रहे हैं नायडू। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि TDP ने गठबंधन छोड़ा मोदी सरकार के बाद और नायडू लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते रहते हैं, उसी की कड़ी में ये एक चीज़ है।
और रेलवे स्टेशन पर अब एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी और 20 मिनट पहले जाना होगा।
जी, ये खबर हर जगह है। इसको शुरू करने की कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर शुरू करने की बात हो रही है, जिसमें 202 रेलवे स्टेशन होंगे और ये के एयरपोर्ट की तर्ज पर जो है वो 20 मिनट पहले पहुंचना होगा, सुरक्षा के लिहाज से है।
जी
गुरप्रीत, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, अब समय है वसतुल्ला खां की डायरी का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है।
पिछले 5 दिन से मैं अपने बचपन के दोस्त असलम उस्ताद को बेतरह याद कर रहा हूँ। उस्ताद असलम का इंतकाल 6 वर्ष पहले हुआ। उनका विजिटिंग कार्ड आज भी मेरे सामने है, मोहम्मद असलम खान, MSc फिज़िक्स गोल्ड मेडलिस्ट। असलम उस्ताद 25 वर्ष तक एक कॉलेज में फिज़िक्स पढ़ाते रहे, फिर एक दिन जाने क्या सूझी कि नौकरी छोड़ छाड़ दाढ़ी बढ़ा ली और अपना क्लिनिक खोल लिया, जहां वो शुगर और कैंसर का इलाज दवा से नहीं दुआ से करते थे। मगर अक्सर मरीज एक बारी के बाद पलट कर नहीं आते थे। असलम उस्ताद का कहना था कि जो जो मरीज़ अच्छा हो जाता है वो दोबारा काहे को आएगा। उस्ताद असलम ने घर में ही अपनी छोटी मोटी लैब भी बना ली थी, जिसमें वो जिनों से बिजली पैदा करने की कोशिश करते थे। उनकी थ्योरी ये थी कि चूंकि जिन एनर्जी से बने हुए होते हैं, इसलिए अगर काबू कर लिया जाए तो उनसे बिजली पैदा करके पाकिस्तान की लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है। कभी असलम उस्ताद हम जैसे जाहिलों को तफसील से बताते थे कि इस्लामी किताबों में जिस ज़ुल्क़रनैन बादशाह का जिक्र है, उसके पास शीशे का ऐसा प्याला था जिसमें पूरी दुनिया नज़र आती थी। इसका मतलब है कि ज़ुल्क़रनैन पहला बादशाह था जिसके पास 3000 वर्ष पहले भी इंटरनेट था। एक दिन उस्ताद असलम ने पूछा, तुम बड़े ज्ञानी बने फिरते हो, ये बताओ कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 1400 वर्ष पहले 1500 किलोमीटर परे मदीने में बैठ के ईरानियों के साथ चल रहे कादसिया के युद्ध में अपने कमांडर को भला कैसे गाइड कर रहे थे। जाहिर है कि ऐसा मोबाइल टेक्नोलॉजी के बगैर संभव नहीं हो सकता। रात को मैं जलंधर में होने वाली 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का हाल पढ़ रहा था, जिसपे आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नगेश्वर राव जी ने अपने पेपर में साबित किया कि विष्णु भगवान के पास जो सुधरधन चक्र था, वो अपने टारगेट को तबाह करके वापस आ जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लाखों वर्ष पहले भी गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद थी। रावण के पास सिर्फ एक पुष्पक विमान नहीं, बल्कि 24 और तरह के विमान भी थे, और लंका में रावण के कई एयरपोर्ट भी थे। गंधारी ने सैकड़ों कोरोजन में, इसका मतलब है कि कोरो पांडवों के ज़माने में भारत में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका इस्तेमाल हो रहा था, वरना एक औरत सैकड़ों बच्चे कैसे जन्म सकती है। काश उस्ताद असलम आज जिंदा होते तो वो भी शायद किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते और आंध्रा यूनिवर्सिटी के नगेश्वर राव की तरह वाह वाह समेट रहे होते। जब उस्ताद असलम के ज्ञान की कदर का जमाना शुरू हुआ तो वो इस दुनिया से ही चले गए। हाय हाय।
आपको वसतुल्लाह खां की डायरी कैसी लगी हमें जरूर लिखें। सिडनी में जारी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके बाद उसे फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा गया। आज 5वें और अंतिम दिन का खेल बारिश के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाया है और ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 6 रन है और वो अभी भी 316 रनों से भारत से पीछे है, और लेकिन उसके हाथों में अभी 10 विकेट है। अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारतीय फुटबॉल टीम ने कल संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे 17वें AFC एशियन कप में अपने ग्रुप ए के पहले मुकाबले में थाईलैंड को 4-1 से हराकर जोरदार अंदाज में शुरुआत की। भारत के लिए 34 साल के कप्तान सुनील छेत्री ने 2 और जे लाल पेखलुआ और अनिरुद्ध थापा ने 1-1 गोल किया। भारत की जीत पर फुटबॉल समीक्षक गौस मोहम्मद कहते हैं,
मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे थे, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बहुत बोली लेकिन हार का सामना करना पड़ा उन्हें विराट कोहली की टीम से, इसी तरह सुनील छेत्री की टीम ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है 4-1, और इस वक्त भारत अपने ग्रुप में टॉप पर आ गया है। बाकी जो अन्य टीम है वो ड्रॉ खेल के 1-1 पॉइंट है, लेकिन हमारे अभी 3 अंक हैं एक मैच में।
भारत का अगला मुकाबला 10 तारीख को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। और अब समीक्षा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कोई टेस्ट सीरीज जीतने जा रही वर्तमान भारतीय टीम ने कैसे किया सपने को साकार।
सीरीज जीतनी हमें यहाँ पे, जो हम पहले से सोच के आए थे, तो वो हमारा एम किसी भी कीमत पर नहीं हिलेगा। सबका काम है कि फील्ड पे जाके परफॉर्मेंस देना, और अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, अगर और कोई बैट्समैन उस पोजीशन में कंट्रीब्यूट करने के तो वो करेंगे।
ये शब्द हैं भारत के कप्तान विराट कोहली के, और जैसा उन्होंने कहा ठीक वैसा ही हुआ। सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत को केवल एक बार बल्लेबाजी करनी पड़ी और भारत ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 622 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित कर दी। खुद कप्तान विराट कोहली के बल्ले से केवल 23 रन निकले, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने 193 रन बनाकर कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। वैसे चेतेश्वर पुजारा ने पहले टेस्ट मैच में 123 और तीसरे टेस्ट मैच में 106 रनों की शतकीय पारी खेली। 18 टेस्ट शतक उनके बल्ले से निकल चुके हैं और आज भी उनसे उनके रन रेट को लेकर सवाल किए जाते हैं और हर बार उनका जवाब यही होता है।
टेस्ट क्रिकेट में वही इम्पोर्टेंट है कि आप पिच को और सिचुएशन को रीड करके बैटिंग करें।
जो भी हो, चेतेश्वर पुजारा की लंबी पारियों के दम पर ही भारत अपने उस सपने को साकार करने में कामयाब रहा जिसका इंतजार उसे साल 1947-48 से है, जब भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेला था। लेकिन इस सीरीज में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी देखते देखते छा गए। उनका टीम में आना टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में धुआंधार 76 और दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भी 77 रन बनाकर जहां तीसरे टेस्ट मैच में मिली जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो आखिरी टेस्ट मैच में भारत को बेहद शानदार शुरुआत दी। अपना विकेट गंवाना उन्हें अब समझ में आ गया है और वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं।
Really disappointed that I threw my wicket. With that said, it's a learning curve, and if I don't make this mistake again, then it'll be a good learn.
बल्लेबाजी में तो ऋषभ पंत ने भी सिडनी में 159 रनों की बेहद शानदार शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत की राह से जुदा ही कर दिया। लेकिन गेंदबाजों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। ईशांत शर्मा और अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में 5 विकेट झटकने वाले कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन जीत का आधार बने जसप्रीत बुमराह। चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी और कल वो 21 विकेट ले चुके थे। उन्हें अपने गेंदबाजी एक्शन के रिएक्शन का जवाब देना पड़ता है।
एक्शन के बारे में जो बोलना है बोले, वो तो मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ, बट मेरे एक्शन, मैं टीवी में जब छोटा था तो मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स को बॉलिंग करते देखता था, तो उसके वजह से पता नहीं कैसे ये एक्शन डेवलप हो गई।
अब सिडनी में सूरत हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया को इंद्र देवता ही हार से बचा सकते हैं या फिर उसके बल्लेबाज किसी तरह मैच को ड्रॉ करा ले जाएं। दोनों ही हाल में या तो भारत 3-1 से या फिर 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतने जा रहा है। इसके लिए कप्तान विराट कोहली और पूरी भारतीय टीम बधाई की हकदार है। ये साल की शुरुआत में ही भारत को मिला सबसे बेहतरीन तोहफा है। उधर दक्षिण अफ्रीका ने केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कल चौथे ही दिन पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए दूसरी पारी में 41 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर के नाबाद 24 रन की मदद से केवल 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संकेत दिए हैं कि सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी में अभी वक्त लगेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ दूसरी बैठक पर बातचीत हो रही है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर कोरिया के साथ हुई पहली बैठक अच्छी रही थी। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ जनवरी या फरवरी में दूसरी मुलाकात हो सकती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के चुनाव आयोग ने आम लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। देश में पिछले रविवार को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे इस रविवार को जारी किए जाने थे, लेकिन नतीजे अब तक नहीं आने की वजह से लोग चिंतित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन और कांग्रेस के सहयोगियों के बीच हुई ताज़ा बैठक सकारात्मक रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने कहा है कि व्हाइट हाउस मैक्सिको दीवार की फंडिंग की मांग के बिना कामबंदी खत्म करने का रास्ता निकाले और बजट पास करे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।